बिस्मिल्लाह कीजिए।
सर मेरा सवाल है
इरशाद
कि बातें मेरे मराज की में है कि अब्बा ने फरमाया कि जब आप परेशान हो या मुश्किल में हो
जी
तो आप कलंदर बाबा की का जिक्र करें, इसमें क्या हिकमत है?
इसकी दो हिकमतें, एक नहीं, इसमें हिकमतें हैं। देखें, पहली बात ये कि जब आपका ध्यान हजूर कलंदर बाबा औलिया जैसी हस्ती की तरफ गया तो एक तो ये कि आपका ध्यान मसले से हट गया, सामने की बात है। दूसरे ये कि जब आप परेशानी में किसी को पुकारते हैं या किसी की तरफ मतवज्जो होते हैं तो आपके अंदर एक रिक्कत होती है, गुदाज होता है, एक नरमी होती है, तो गोया आप इंस्पायरेशन को एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाते हैं। एक मूड होता है, एक मोड होता है। यानी आप जब इंस्पायरेशन को रिसीव करने के मोड में आ जाते हैं तो असल में क्या होता है कि आप जब किसी रूहानी हस्ती की तरफ मतवज्जो होंगे तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से इंस्पायरेशन आएंगी। इंसान के सारे प्रॉब्लम्स की जड़ अल्लाह से दूरी है, हाँ या नहीं?
यस सर।
तो अल्लाह वाला आपको क्या इंस्पायर करेगा? अल्लाह वाला आपके अंदर ये इंस्पायरेशन देगा कि आप अल्लाह के करीब हैं, और जो बंदा अल्लाह के करीब है वो खुश है, जो खुश है वो अल्लाह के करीब है। इन्हीं जिन्हीं गल है। तो जब आप कलंदर बाबौलिया का तस्करा करेंगे किसी भी परेशानी में तो ये इसके पीछे हिकमतें नजर आई आपको। भाई ये तो तयशुदा बात है ना कि वो एक अल्लाह वाले बंदे हैं, और जब आप अल्लाह वाले की तरफ मतवज्जो होंगे तो वो आपको क्या देगा? भाई अल्लाह वाला क्या बेचता है? वो अल्लाह ही को तो बेच रहा है। सब्जी वाला क्या बेचता है? सब्जी। दूध वाला क्या बेचता है? दूध। कसाई क्या बेचता है? गोश्त। आप कसाई से जाके सब्जी तो नहीं मांगेंगे भाई, अल्लाह वाले के पास जाएंगे तो आपको क्या देगा? वो आपको अल्लाह की तरफ का रास्ता देगा, आपके जहन को अल्लाह की तरफ मतवज्जो होने में मदद देगा, हाँ या नहीं? तो सारी खेल तो बंदे और अल्लाह के दरमियान की है ना जी। हम लोगों ने ये बाजे बजा दिए, बुत बना लिए हैं, दौलत को बुत बनाया हुआ है, ताल्लुकात को बुत बनाया हुआ है, वो मेरा फलाना कमिश्नर जानने वाला, तो वो मेरा गवर्नर जानने वाला, फलां वजीर मेरा जानने वाला, हम इन चक्रों में पड़े हुए हैं। और भाई कितने लोग हैं जो हाथ रख के कहते हैं जी मैं अल्लाह को जानने वालों में से हूँ। अच्छा, मजे की बात है, जो अल्लाह को जान लेता है उसमें अकड़ नहीं होती, जो किसी वजीर को जानता है देखें जरा उसका सीना कैसे बाहर निकल के वो बात करता है। भाई जिसके पास दौलत है तो वो दौलत के गुर्रे में बात करेगा तो कैसे चौड़ाव के बात करेगा, हाँ या नहीं? और अल्लाह वाला जानता है कि मैं मखलूक हूँ, बाकी सब भी अल्लाह की मखलूक हैं, वो उनसे भी उसी तरह प्यार करता है जिस तरह अल्लाह उनसे प्यार कर रहे हैं। वो उनके दुखों पे, उनकी गलतियों पे ऐसे ही मतलब दुखी होता है, चाहता है कि ये भी सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो हर अल्लाह वाला यही चाहता है कि आप अच्छे हो जाएं। तो वो वहां से जो इंस्पायरेशन मिलती हैं किसी भी रूहानी बंदे की तरफ रजू करने से। अब इसी में अगला मरहला क्या है, जब आप तसव्वुर शेख का मुराकबा करते हैं तो आपका ध्यान हर वक्त अपने मुर्शद पे रहता है। अब आप मान लीजिए कि मुर्शद अल्लाह वाला है तो आपको हर वक्त क्या इंस्पायरेशन आएंगी? भाई अल्लाह वालों वाली इंस्पायरेशन आएगी ना। आप मतवज्जो तो हो
जी।
क्यों जी?
اسی سے ہی ہے کہ کبھی کبھی یہ تو پریشانی اور اس کی وضاحت ہو گئی سر, ایسے بھی ایک دم خیال آ جاتا ہے اللہ والے کی مرشی کرنے کی, تو اسی طرح سمجھیں گے کہنے کا میرے مطلب ہے کہ وہ خود جو آ جاتا ہے اس کو
بس اسی کو پکڑ لیں, جو آ گیا تو پکڑ لو. دیکھو نا سیدھی سی بات ہے, یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ بھائی مجھے لوح قلم پڑھنی چاہیے. اب مجھے خیال آیا میں نے اسے گزرنے دیا, کیا فائدہ ہوا؟ بھائی اللہ نے انسپائر کیا کہ آپ کو یہ لوح قلم پڑھنی چاہیے, مثال دے رہا ہوں. اب آپ اسے پکڑیں گے نا اور جت جائیں گے, کوشش کریں گے, ٹکریں ماریں گے, اس کی ڈکشنریاں دیکھیں گے, لوگوں سے پوچھیں گے, کرتے کراتے کرتے کراتے ایک دن ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ ارے بھائی مجھے تو یہ کتاب سمجھ آنا شروع ہو گئی. پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کہیں گے الحمدللہ مجھے یہ کتاب سمجھ آ رہی ہے. پھر ایک وقت ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جی الحمدللہ مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی کہ اس کتاب میں کیا ہے, اس نے میرا ذہن بنا دیا, اب مجھے قرآن پڑھنا. غور کریں کیا ہوا کہ آپ کو ایک خیال آیا. میں نے عرض کیا تھا خیال کی چار قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو آپ کے مقصد حیات سے جڑا ہوتا ہے, دوسرا سورس ہے خیال کا آپ کا نفس, یعنی وہ تقاضوں سے ریلیٹڈ تھاٹس ہوتے ہیں. تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آپ کے ماحول سے آنے والی تلاد ہوتی ہیں جس میں خواہشات کا چکر ہوتا ہے. اور چوتھی قسم میں نے عرض کیا تھا جو شیطان کی طرف سے آتی ہیں کہ وہ ہر, یعنی ان تینوں سورسز کی جڑ مارتا رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ جو مقصد حیات کی طرف متوجہ کرے, مثلا آپ کو خیال آیا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے, اب قرآن پڑھنا مقصد حیات سے کیسے متعلق ہے؟ ہم مخلوق ہونے کے ناطے اللہ کی, اپنے خالق کی بات سمجھنے کے قانوناً اصولاً اخلاقاً پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر ہم اللہ کی بات کو سمجھنے کا خیال ہمیں آ رہا ہے کہ بھی اللہ کا کلام پڑھو, یعنی قرآن پڑھو کا مطلب اللہ کی کلام کو سنو. اللہ کا کلام کیا ہے؟ وہی. وہی کو سمجھنا ہی تو ہمارا مقصد حیات ہے اصل میں. بھئی اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہی تو بندے کا فرض ہے نا. اب ہم نے سمجھا کہ یہ فریضہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھا, انہوں نے تو ادا کر دیا. اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے مولوی حضرات جو ہیں, یہ مولانا صاحبان جو ہیں, یہ جو محدث ہیں, یہ جو مفسر ہیں, یہ ان کا کام ہے. بھئی انہوں نے بھی کر دیا, اب ہماری باری ہے, ہمیں بھی تو غور و فکر کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس لیے جب یہ خیال آئے جو آپ کو مقصد حیات کی طرف متوجہ کرے, وہ ظاہر ہے کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے آئے گا.
جی جی,
ایک کے سپیلنگ ہے ایم ڈبل او ڈی, میرا موڈ نہیں ہے, یعنی میری طبیعت کا رجحان نہیں ہے. موڈ کہتے ہیں اس کی وہ طرزیں, ایم او ڈی ای, ایک موڈ ہوتا ہے ایک موڈ ہوتا ہے. یعنی کہ اب دیکھیں نا, آپ اپنے موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ کر دیتے ہیں, आप उसको रिंगिंग मोड पे कर देते हैं, आप उसको वाइब्रेशन मोड पे कर देते हैं, ये MODE मोड होता है। किस हालत में इसको रखा जा रहा है? वाजे हो गई बात? यानी आपके अंदर की सेटिंग जो है, जब आप रिसीविंग के मोड में आ जाते हैं, एक तो मूड होता है ना कि मेरा मूड है रिसीव करने का नहीं है, एक आपके अंदर इंस्टॉल्ड है कि आप अपना नेटवर्क ऑन करते हैं तो आप बाहर की कॉल को रिसीव करने लगते हैं। आप देखें ना, जैसे आपके मोबाइल में ऑप्शन है, अगर नेट के साथ आप कनेक्टेड हैं तो आप नेट के मोड में आ गए। अब आप YouTube भी देख सकते हैं, अब आप Twitter भी जा सकते हैं, Facebook भी देख सकते हैं, WhatsApp भी चला सकते हैं। अगर ये Wi-Fi का मोड ऑफ है तो आप डेटा का मोड पे आ जाते हैं, वो ऑफ है तो आप सिर्फ कॉल सुन सकते हैं।
जी।
अब वाजी हो गया मूड और मोड?
बहुत अच्छे से। थैंक यू सर,
मोस्ट वेलकम।
मैं एक सवाल कर सकती हूँ?
जी जी, ये नशिस्ती इसीलिए कि आप सवाल करें। जी बिस्मिल्लाह।
सर मेरा सवाल है सूर्य नश्रा के हवाले से, अलम नश्रा लका सदरक व वदानन का विजरक अल्लजी अनकदा जहरक। तो सर इस पे जो बोझ हटाने वाली बात है, वो हम पर से कौन सा बोझ हटाया जाएगा?
जाहरक का, जाहरक इजहार करने में नुक्स होना, आप अपने अंदर की फीलिंग्स को, आप अपने अंदर के इल्म को जाहर नहीं कर सकते। अनकदा जाहरा का इसमें नुक्स है, नुक्स जो है वो एक्सप्रेशन में नुक्स को। हमने कहा जिसने तुम्हारी कमर तोड़ी हुई थी, भाई जाहर इजहार से है या नहीं? हमने जाहर का मतलब कमर लिया हुआ है,
इजहार से।
वाजे हो गई बात?
जी सर।
देखे ना, अल्लाह कहता है कि अलम नशरह लका सदरका, यानी कि क्या मैंने तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया, यानी जहाँ से चीजें सादर होती हैं क्या उसको तुम पे वाजे नहीं कर दिया, और क्या तुम्हारे एक्सप्रेशन में जो रुकावटें थी उनको दूर नहीं कर दिया? यानी देखे ना, देर वॉज ए टाइम वेन यू वर अनएबल टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आर, आपको पता ही नहीं होता था मुझे क्या पूछना है, हाँ या नहीं। तो रफ्ता रफ्ता क्या हुआ, आपको इजहार पे कुदरत हासिल होती चली जा रही है या नहीं?
सर
ये है अनकदा जाहरा। तुम्हारे इजहार में जो नुक्स है उसको दूर कर दिया। अब देखे ना, मैं अपनी बात अगर वाजे ना कर सकूं तो क्या हुआ, पहले मैं कर सकता था, नहीं कर सकता था, क्या हुआ, अल्लाह ने कुव्वते वजाहत अता फरमाई, बात को वाजे करने का हुनर सिखाया, तो ये किसने करम किया? इसी तरह हजूर अलैहिस्सलाम जो खामोश रहते थे, हर वक्त सोच विचार में रहते थे, अल्लाह रब्बे करीम ने उनसे इरशाद फरमाया कि भी हमने तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन की राह में रुकावट थी उसको वाजे कर दिया, उसको हटा दिया। ठीक हो गया?
अच्छा जी सर, ठीक है।
यानी कि इसमें एक लतीफ पैराया ये है कि जो हजूर अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वो उन हर उम्मती के लिए दस्तयाब है। अगर कोई बंदा उनकी तालीमात पे अमल करेगा तो उसको भी तो वही बेनिफिट्स मिलेंगे ना।
जी
अगर आप हजूर अलैहिस्सलाम की तर्ज फिक्र अपनाने में जुट जाएंगे तो आपको उनके वो बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?
बिल्कुल सर मिलेंगे।
बस एनी जिनी गल है। जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र का मतलब है दोहराई, जहन में तकरार। फिर आप क्या होता है, आपके जहनी सतह बुलंद होना शुरू हो जाती है। हम कहते हैं दूसरे मेरा जिक्र करें, नहीं दूसरों का जिक्र नहीं, आपके अपने जहन में जब आपका एक्सप्रेसिव पावर बढ़ेगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के दर्जे भी तो बढ़ेंगे ना। शुक्र है इतनी तो समझ आई।
जी सर, मेरे सवाल हो गए, कोई और सवाल?
जी
अस्सलामुअलैकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ये बातें मेरे मुराद से है, मेरा 229 पे सर, ये इंतहा पसंदी जाती मामला की हद तक तो दुरुस्त है बल्कि फायदा भी देती है
जी।
मगर जहाँ दूसरे इन्वॉल्व हो जाए वहाँ इंतहा पसंदी नुकसानदेह हो जाती है। जज्बातियत ये है कि आप दूसरों से तवक्कात रखते हैं, तवक्कात नहीं रखनी चाहिए, दूसरों से तवक्कात ही के सबब आपको उन पर गुस्सा आता है। सर ये तो समझ में आ गया। ये जो आगे है आप दूसरों की जहनी सतह पर उतर कर बात करना सीखें सर, ये कैसे सीखें, इसमें
मतलब
क्या करना है सर?
कहने का मतलब ये है कि जब आप बात करें तो ये भी तो देखें ना कि अगला आपकी बात समझने का अहल है या नहीं है। अब देखे ना ये गलतियाँ मुझसे होती थी, मैं अपनी जो बात मैं समझा होता था वो लोगों को समझाने बैठ जाता था, ठीक है, नतीजा वो बहस शुरू हो जाती थी क्योंकि अगले का तो वो मैार ही नहीं था। अब देखे ना एक आदमी एक बात को मादी जोन में जानता है और वहीं तक समझ रहा है, मैं उसको यकदमी रूहानियत की बातें बताने बैठ जाता था तो नतीजा फसाद हो जाता था। अब देखे ना एक बंदे का जहन बना हुआ है मजहबी तर्जों में।
हाँ जी।
अब मजहब कहते हैं जो मलम्मा कारी होती है उसको मजहब कहते हैं, किसी चीज पे सोने मलम्मा कारी, किसी चीज पे सोने का पानी चढ़ा के उसको सोने का दिखाना।
अच्छा।
जिसे रोल्ड गोल्ड कहते हैं, किसी चीज पे सोने का पतरा चढ़ा देना, वैसे लगे कि ये सोने की, हालांकि वो सोने की है नहीं है, ठीक है। जहब सोने को कहते हैं ना, तो मजहब कहते हैं जिस पे सोने का पानी चढ़ा, ठीक है, इसे मलम्माकारी कहते हैं। और दूसरा मतलब सुन के आपको मजीद हैरत होगी कि मजहब कहते हैं दूर जाना, हटना, और रफा हाजत के लिए जहाँ जाते हैं उसको, यानी बैतुल खिला को भी मजहब कहते हैं।
अच्छा, ओ,
कैसे डिक्शनरी का फायदा देखा?
बहुत ही, ये तो बहुत सारे मीनिंग आ गए सर। ये हटना और दूर जाना, तो जी सर पहले आपसे
इज़ाबेला फिरौना कहा ना कि फिरौन की तरफ हटो, दूर जाओ।
जी सर,
ठीक है ना, याद है वो सूरत जो हमने पढ़ी थी जिसमें फिरौन को अल्लाह कहते हैं इज़ाबेला फिरौन, फिरौन की तरफ जाओ, यानी हटो यहाँ से और उसकी तरफ जाओ।
जी सर।
अब इसी से ज़हब कहते हैं दूर जाने को, तो रफा हाजत के लिए भी आप दूर जाते हैं।
हाँ जी।
तो जहाँ जाते हैं उसे मजहब कहते हैं।
सही हो गया,
भैया पहले मजाहिब जो हैं वो कहते हैं भाई हम भी तो यही कह रहे हैं, गंदगी को साफ करना, पाकीजगी इख्तियार करना।
जी सर। अब
देखे ना, सीधी सी बात है, अब एक बंदा जो मजहबी तर्जों का हामिल है, आप उससे रूहानी तर्जों की बातें करेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया ना?
ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया।
अब अगले की ज़हनी सतह को गैस करना और समझना कि ये कहाँ से बोल रहा है, किस मीटर बैंड पे बोल रहा है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको उतरना है। सतह पे उतरने का मतलब है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे आके बात करें। अब देखे ना, अब अगर आप अपनी अपनी बात अपने खामंद से अपने लेवल पे करेंगी तो उसको तो नहीं समझ आएगी, लेकिन अगर आप उनके लेवल पे उतर के उन्हीं की तरह की तर्जों में बात करेंगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी। वरना तो आप उम्मीद लेके बैठी हैं कि जी चूंकि ये मेरा खामंद है इसे मेरी बात समझनी चाहिए, वो फसाद होता रहेगा क्योंकि उसने समझनी है कोई नहीं भाई, वो तो आपसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आप उसकी बात समझे।
जी जी,
अब आप यही उम्मीद उससे लगाए बैठे हैं, क्या कहा अब्बा ने कि भाई आपकी उम्मीदें होती हैं, तवक्कुआत होती हैं, लिहाजा आपको गुस्सा आता है। अब चूंकि तवक्को ही कोई नहीं रही, चूंकि अब हमें देखे ना मुर्शिद की तरबियत की वजह से किसी से तवक्को ही कोई नहीं रही, लिहाजा किसी पे गुस्सा भी नहीं आता। अच्छा, गुस्सा इसलिए मना है क्योंकि इससे एनर्जी का ज्या होता है। वो जो बंदे की फ्लाइट है ना, जो फ्लाइट का फ्यूल है वो जाया हो जाता है।
जी सर, ये तो
देखे ना गुस्से में क्या होता है, आप एक आंकड़ा पड़ा होता है, जैसे कश्ती में लंगर नीचे फंसा हो और आप जितना मर्जी इंजन चलाएं, वो नीचे से तो आंकड़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह गुस्से में बंदे के जहन में एक ही बात चल रही होती है, तो वो दूसरी कोई बात सोच ही नहीं सकता।
सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर, कहीं और सोच जाती। सही कह रहे हैं, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर।
माय प्लेजर।
मेरा हो गया सर।
जी, मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम
वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सही, मेरा सवाल एहसान और तसव्वुफ से है सर। पेज नंबर 37 से मैं पढ़ रही थी कि अंचों को आफाक अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन करीब हम इन्हें अपनी निशानियां आफाक में और खुद उनके नफूस में दिखलाएंगे। सर इसको थोड़ा सा आप बता सकेंगे?
जी जी, इसकी बड़ी आसान सी मिसाल है। अब देखें, आप बाहर देखते हैं आपको सूरज, चांद, सितारे, बादल, पहाड़, ये दिखते हैं, ठीक है? आप इन पे गौर करते हैं, ये आफाक की बातें होगी, बाहर की दुनिया। अब जब आप अपने इनर में गौर करते हैं तो समावाद से मुराद हो गया आपके शऊर के दर्जे, समावाद, ठीक है? शम्स से मुराद हो गया रूहे आजम, चांद से मुराद हो गया रूहे इंसानी, सितारे से, नजम से या कोकब से मुराद हो गया रूहे हैवानी, और जबल यानी पहाड़ से मुराद हो गया जिबिलत। तो अब जब आप इसे अपने इनर में देखेंगे तो पहाड़ तो नहीं दिखेगा, वहां तो जिबिलत दिखेगी। अब इसी तरह जब आप बाहर देखेंगे तो आपको आसमान दिखेगा, लेकिन जब आप इनर में देखेंगे तो ये शऊर के दर्जे हो जाएंगे। यही वजह है कि बाहर जाके साइंसदानों ने रॉकेट में बैठ के कहा, कहाँ है आसमान, हैं? ये तो सारे ही आसमान ही एक ही आसमान है, बस खिला ही खिला है। याद है ये बात लोगों ने कही? अल्लाह समावाद कह रहे हैं, आप इधर आसमान ढूंढ रहे हैं। फिर किसी बुकरात ने कहा, कि जी हर कुर्रे का अपना एक समा है, यानी अपना एक आसमान है, चांद का अपना एक आसमान है। तो उन्होंने कहा जी इस तरह सात आसमान, वो जब देखा तो यहाँ तो बिलियंस और ट्रिलियंस में कुर्रे हैं, तो ये तो समावाद फिर बिलियंस एंड ट्रिलियंस में होने चाहिए, फिर सबे समावाद का क्या मतलब हुआ। तो पता चला कि भाई जब हम इनर में गौर करेंगे तो हमें अपने शौरी दर्जात को पार करना है। लतरकबन्ना तबकन अन तबक, फिर सवार होके रूहे आजम की, यानी कि क्या रूहे इंसानी के घोड़े पे, फिर आप ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ते चले जाएं और चढ़ते चले जाएं। लतरा का बनना, ठीक हो गया
जी सर? ठीक हो गया सर। इसी में एक जगह ये पढ़ रही थी तो इसी के साथ था, हज़रतज़ादे बिस्मी रहमतुल्लाह से सर, ये उनकी दुआ कुछ समझ नहीं आई कि हज़रतज़ादे बिस्मी रहमतुल्लाह ने बार गए इलाही ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से करती हूँ तो मुझे उसमें झोंक दे, और अगर मैं तेरे हुज़ूर जन्नत की लालच में सजदा करती हूँ तो मुझे उससे तो जन्नत से महरूम कर दे, और अगर मैं सिर्फ तेरी ज़ात के लिए तेरी इबादत करती हूँ तो तू मुझे अपने दीदार से नवाजे। सर ये बात इसकी ये समझ नहीं आ रही कि हम उसको मानते ही नहीं सब कि अल्लाह हमें ये दे दो।
भाई यही फर्क है राबिया बसरी में और आम बंदे में। देखे ना, आपको ये बात इसलिए बताई गई कि तमा लालच और खौफ, तमा लालच और खौफ से बाज आके अल्लाह को चाहे। देखे ना, जन्नत के खौफ से, सॉरी जहन्नम के खौफ से या जन्नत के तमा और लालच में अगर इबादत कर रहे हैं तो ना ही करें। उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर जन्नत का खौफ है तो मुझे उसी में झोंक दे, अगर मेरे अंदर जन्नत का लालच है तो मुझे उससे महरूम कर दे, मुझे सिर्फ तेरी तलब है, मुझे सिर्फ तू चाहिए। देखें किस आला दर्जे की बात है। एक दफ़ा राबिया बसरी के हवाले से एक वाक्या है कि वो एक दफ़ा किसी ने देखा बड़े जलाल में, एक हाथ में आग और दूसरे में पानी का कटोरा या डोल लिए हुए जा रही हैं कहीं। किसी ने पूछा राबिया क्या कहाँ का इरादा है, इस हालत में कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा मैं जहन्नम को बुझाने और जन्नत को जलाने जा रही हूँ, कि लोग जो हैं वो इस चक्कर में उसके साथ इबादत करते हैं, ना ये होंगे ना ये।
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने बताया।
अब असल बात सुन लें
जी सर,
ये तो राबिया बसरी का लेवल था ना, अब असल बात सुन लें। देखिए ये सारा निजाम अल्लाह का वजा कर गए। अल्लाह ने लोगों को अंजाम से मुतनब्बे किया, इसका नाम जहन्नम है, कि देखो तुम गलत करोगे तो गलत नतीजा निकलेगा, इसका नाम जहन्नम है। कहा कि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ठीक है
जी सर।
अब असल में जन्नत अच्छे कामों का अच्छा नतीजा है, जहन्नम बुरे कामों का बुरा अंजाम है। अल्लाह हमें अंजाम से बता रहा है कि भी दोनों का अंजाम देख लो, एक अच्छे कामों का अंजाम अच्छा है, बुरे कामों का अंजाम बुरा है। अब आपको ये बात समझ आ गई तो आप अच्छे काम करेंगे तो उसको एंजॉय नहीं करेंगे, अगर गलत होगा तो आप तौबा तिल्ला करेंगे, अल्लाह से माफ़ी के खास्तगार होंगे और अपनी इस्लाह करेंगे ताकि आपको अल्लाह के कि अल्लाह मियाँ मुझे समझ आने में थोड़ी गलती हो गई तू माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। ठीक हो गया ना? तो अल्लाह को अल्लाह के लिए चाहना, देखे ना मखलूक होने के नाते हम पे ये फर्ज आयद हो जाता है, कि हम अल्लाह की बात को समझें, अपने खालिक की, अपने मालिक की बात को उस तरह समझें जिस तरह वो समझाना चाहता है। इस जुमले में एक एक लफ्ज़ पे गौर करें। यानी हमें अल्लाह की बात को उस तरह समझना है जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है, लेकिन हम तो अपना उस तरह ही चला रहे हैं ना, उस तरह समझ थोड़ा ही रहे हैं।
सर एक बात आपसे शेयर करनी थी, कल ही मैं बैठी थी तो
जैसे
तो मैं शादी को यही बता रही थी कि सर एक फीलिंग वाकई में अब डेवलप हुई है, क्योंकि अच्छाई और बुराई का पैटर्न सेट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलना ये चाह रही थी सर, वो जो आप बताते थे ना कि जब गुस्सा आता है तो करारियाँ एकदम उल्टी चलती हैं, सर अब वो वाला मवाजना कुछ जहन में आ गया है सर।
अल्हम्दुलिल्लाह
जैसे ही कोई बात होती है तो सर वाकई 15 मिनट के लिए ना करारियाँ उल्टी चल पड़ती है सर, एकदम
अल्लाह का शुक्र
जाता है।
अल्लाह का शुक्र।
तो सर बड़ा आपका आपकी पढ़ाई का आपकी तालीम का बड़ा ख्याल आया, तो सर आपको थैंक यू करना था क्योंकि
अल्लाह आपको खुश रखेगी। ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, अल्लाह ने करम किया। देखिए ना, मैं आपके सामने अपने मुर्शिद की बात दोहराता रहता हूँ, ठीक है ना। ये सारा उन्हीं की बातों का असर है। ये मेरे लिए एक सादत है, मेरे लिए एक इनाम है कि उनकी बात का आप पे असर हुआ और आपके अंदर ये बात एहसास उजागर हो गया कि गुस्से में गरारियाँ उल्टी चलती हैं, इनको उल्टा नहीं चलने देना।
ऐसा फील हुआ है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया।
अल्लाह खुश रखे।
और सर एक लफ्ज आपके लिए आ रहा था, परसों सर आप अब्बा का है सर, मुझे
आपको इज्जत दे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। ये मेरे मेरा नसीब संवर गए, ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है।
सर आपको पता ही नहीं, हम लोग इतने एक्साइटेड है ना इस वक्त आपके जो आप काम कर रहे हैं, जिस पर आप वर्कआउट कर रहे हैं सर। अल्लाह ताला आपके
दुआ करें, आपकी दुआएं रंग ला रही हैं। देखें माशाल्लाह किस रफ्तार से, देखें ना ये इतना अल्लाह ने जो अता की सकत के मैं लगातार बैठ रहा हूँ, तो ये जाहिर है उसी की अता है।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत दुआएं सर आपके लिए।
अल्लाह आपको खुश रखेगी। जी
सवाल हो गए।
जी जनाब, और कोई?
अस्सलामुअलैकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर ये बातें मेरे मुराद की में से पेज नंबर 303 मुरीद ने सवाल किया, हुजूर ठहराव में क्यों कर इजाफा हो सकता है?
ये सवाल ही 303 है।
जी सर, एक झटके से कहा ठहराव तो मौत है, ही तो जिंदगी है, हरकत हरकत में रहना ही हयात है, ठहर गए तो सब खत्म। सर ये अब थोड़ा सा ये जहन में ये आता था कि जैसे अब ख्याल कभी नहीं आते, एकदम जहन खाली होता है, तो फिर उसको फिर हम उस कंडीशन को कैसे समझते हैं?
बड़ी सिंपल सी बात याद रखें, मैंने कई बार अर्ज किया है कि जब जिस्म साकत हो जाता है तो जहन काम करता है।
जी सर।
और जब जहन साकत होगा तो रूह काम करेगी।
बिल्कुल सही है, ऐसा ही है सर।
तो जब आप पे ये दौर आए कि जहन बिल्कुल ब्लैंक हो जाए, तो समझें कि रूह एक्टिवेट हो गई है।
सही हो गया सर।
अभी चूंकि हमें उसकी वर्किंग का शऊर नहीं है, कोई नहीं।
अच्छा।
आप उसी स्टेट को तवालत दें, उसी को लंबा खींचें और लगे रहें, बैठे रहें किसी बेख्याली में, ताकि रूह की हरकत और तहरीकात आपके शऊर को में राह पा सके।
सही हो गया सही हो गया।
देखे ना, अगर मैंने जब ठहराव और सुकून का मतलब था ना, मेरे जहन में सुकून था
जी, सर।
लेकिन वो लफ्ज ठहराव बोला वह उसका पूरा मतलब बदल गया, तो उन्होंने झटके से उसको करेक्ट कर दिया कि ठहराव का क्या मतलब है, तुम ठहरना चाहते हो, ठहराव तो मौत है, सकूत तारी होना तो मौत है, यानी कि बेजान हो गए तुम, हमने बेजान थोड़ा ही बनाना है तुम्हें, तुम्हारा जहन काम करना चाहिए, उसके बाद आगे रूह काम करनी चाहिए।
जी सर।
ठीक हो गया ना?
सही हो। जी सर। सही हो गया सर।
हाँ जी। अब देखिए ना, हर काम का अपना एक वक्त होता है, एक बात को समझ लें।
सही।
अब ये ख्याल देखें जो मुझे 23 तारीख को आया, ये मुझे 1970 में क्यों नहीं आया, ये मुझे 1976 में क्यों नहीं आया, ये मुझे मतलब है कि 1990 में क्यों नहीं आया, ये 2000 में क्यों नहीं आया। देखे ना, ये पुराने हकीम और लाशौर लिखी, उसको लिखे कितना अरसा हो गया, तब जाके हाँ। उसके बाद ये ख्याल आया, तो कितने साल बीत गए, 15-20 साल बाद ख्याल आया, तो क्या हुआ भाई? जब भी अल्लाह ख्याल दे, आपने अमल करके दिखा दिया, यही सआदत बन गई, इसी चीज की खुशी है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस काबिल समझा कि तूने हमें किसी काम से लगाया, वरना आप इंतजार से बैठे रहे, इंतजार में क्या बहरज है, आप जिस्म को साकत करके बैठेंगे, जेन शांत होगा, जब जेन शांत होगा तो रूह काम करेगी, जब रूह काम करेगी तो अल्लाह मियां खुद ही किसी धंधे से लगा देंगे।
ओके सर, सही हो गया सर।
ठीक हो गया ना?
ठीक हो गया सर। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये एक 294 से भी बात की, इसे फरमाया तन्हाई भी एक तकाजा है, और ये तकाजा तो जानवरों में भी पाया जाता है।
जी हाँ।
तो सर, यानी तन्हाई जरूरी हो गई?
तकाजा कहा है, इसको अंदाजा कर लीजिए। अब्बा ने इस पे एक बड़ा जो एक बड़ा खूबसूरत लतीफा सुनाया था कि जब एक खामंद रिटायर होके हर वक्त घर में बैठा रहता था ना, तो एक दिन बड़ी अम्मा ने कहा, अजी जाइयो जरा बाहर जाके नुक्कड़ की दुकान से पाम तो खाइयो।
सही हो गया।
यानी कम से कम मुझे इतनी देर के लिए तो तनहा छोड़ दो। आपको मैं अब अपना जाती तजर्बा अर्ज करने लगा हूँ, ये मुझे आजकल में ये बड़ा तजर्बा हो रहा है, कोई आके बैठा हो ना, हालां कोई भी हो, यकीन करें कि वो कैफियत नहीं होती जो अकेले में होती है।
बेशक सर, ऐसा ही है, बेशक सर।
यानी कोई आके बैठ जाए, आप भले वो कुछ भी ना कह रहा हो, भले वो कितने ही वो हो, लेकिन आपको उसके मुताबिक बिहेव करना होता है, आपको आराम से उसके मुताबिक बैठना होता है।
बिल्कुल सर।
तो ये भी तो एक पाबंदी हुई कि नहीं, तन्हाई में आपका दिल किया लेट गए, दिल किया बैठ गए, दिल किया कमीज उतार ली, दिल किया वैसे ही टहल रहे, दिल किया बैठ गए पढ़ने, दिल किया मतलब जो जैसे तन्हाई में आजादी है। तो दूसरे की वजह से आपको पाबंद रहना पड़ता है।
जी सर, ऐसा ही है।
ठीक हो गया ना?
जी सर।
तो ये तन्हाई का एक तकाजा है, ये एक तकाजा है, ये जैसे खाना खाना एक तकाजा है, पानी पीना एक तकाजा है, इसी तरह तन्हाई भी एक तकाजा है। और मैंने ये बात बड़े उससे कही और बार बार कहूंगा कि हजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा में जाके तन्हाई का शिकार करते थे, और हम उनके उम्मती जो हैं वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं।
जी सर, बेशक सर। थैंक यू सो मच सर, मेरा हो गया सर।
चलें, मेरा ख्याल है सभी के हो गए, अगर किसी जी वालेकुम सलाम जी।
अब लेक्चर है, उसमें मैंने कहा शोर इल्जन है, धोखा है, फ्रेड, तो इसको किस तरह हकीकत क्या है?
हकीकत वो है जो उसके पीछे, मसलन आपका जिस्म है, ये क्या है? शऊर है। ये क्या है? इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि इसको कयाम नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। क्यों? कि ये चेंज हो रहा है हर वक्त, तगैर पजीर है। जो चीज तगैर पजीर है, देखे ना, जब आप एक दिन की बच्ची थी, फिर दस दिन की हुई, फिर महीने की, दस महीने की, फिर साल की, दो साल की, तो क्या हर रोज आप चेंज नहीं हो रही थी? इसी तरह आप हर रोज, आप क्या, हम सब हर रोज इस तब्दीली के मरहले से गुजर रहे हैं। तो हम क्या हुए? जो चीज भी चेंज का शिकार है वो इल्यूजन है। शजरे ममनुआ क्या था? उसमें भी तो रंग चेंज हो रहे थे ना, तब्दीली वाक्या हो रही थी। आदम एक ऐसी स्टेट में थे जिसमें तब्दीली नहीं थी, ठीक है ना? हमारे यहाँ हर चीज हर कैफियत में तब्दीली है, लिहाजा ये सब इल्यूजन हुआ। अब इस जिस्म के इल्यूजन होने के बाद आपको अगला मरहला समझ में आया कि भी जिस्म को चला कौन रहा है? तो आप देखते हैं कि भी दर्जा बदर्जा, पहले हमारा जहन चला रहा है, फिर जहन को कौन चला रहा है? वो रूह चला रही है। तो रूह को कौन चला रहा है? वो जात चला रही है। तो जात जो है वो हकीकत है, और जात का ओरिजिन तजल्ली जात है। हाँ या नहीं? तो जब आदमी तो हकीकत जो है वो ला मुतगैर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब जब आप देखें ना, किसी बंदे का नाम लेते हैं, तो वो फर्ज करें कि आपको 70 साल की उम्र में वो बंदा दिखा, तो आपके सामने उसका लम्हा हाजर मौजूद है। उसके गुज़िश्ता 70 साल और बाकी 5-10 साल जितने भी हैं वो तो आपके सामने नहीं है ना। तो वो जो लम्हा हाजर है वो क्या हुआ? वो तो एक मिनट में खत्म हो जाएगा। वो क्या हुआ? इल्यूजन हुआ या ना हुआ? अब फर्ज करें कि आपका कोई, मतलब कुछ जानने वाला फौत हो चुका है, तो जब आप उसको सोचते हैं तो आपको वो पूरा बंदा दिखता है, बचपन से लेके आखिर तक सारी उसकी फिल्म जो है वो आपको एक नुक्ते में बंद दिखती है। हाँ या नहीं?
जी सर।
तो वो हकीकत हुई कि नहीं हुई?
जी।
मतलब जो चीज बाकी रहने वाली है वो हकीकत है, और ये जो जिस्म है ये सब इल्यूजन है। अब वाजे होगी हजूर मुर्शिद करीम की ये बात? बिल्कुल सही, गौर करें। नहीं, वजाहत क्या है, इस पे खुद गौर करें। देखे ना, बच्चा क्या होता है, पहले आप उसे ख्याल देते हैं क्या, कि खाना खाओ, क्या कि दूध पियो, ये पानी पियो, ये कपड़े पहनो, ये सतर पोशी करो, ये छी नहीं करनी, शुशु नहीं करना, वहाँ वॉशरूम जाना है, क्या आप उसको जो ख्याल दे रहे हैं वो उसके मुताबिक अमल करते 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 उनकी आदत में मुब्तला हो गया या नहीं हो गया? फिर आपने कहा स्कूल जाओ, फिर आपने कहा किताबें पढ़ो, उसने पढ़ना सीखा, ये सब क्या ख्यालात ही तो हैं? अब आप आज माशाल्लाह देखें, कहते हैं आपने हंडिया पकानी सीखी, तो आपने रोटियां पकानी सीखी, तो झाड़ू देना सीखा, तो कपड़े धोना सीखा, तो ये सब कुछ सीखा या नहीं सीखा? सब क्या है? ख्यालात। तो आप क्या हुए? ख्यालात का मजमुआ। हाँ या नहीं? भाई कोई एक अमल बता दें जो बगैर ख्याल आए आपने किया हो। कोई ऐसा अमल है?
नहीं।
क्या मतलब हुआ? भाई हमें ख्यालात का मजमूआ, जो ख्याल सामने आ जाता है उसको उसके मुताबिक हम बात करते हैं या काम करते हैं या बिहेव करते हैं, हाँ या नहीं?
सही।
बस
जी सर,
अब वाजी हो गई बात
जी सर। ख्याल से हकीकत तक कैसे रसाई हासिल की जाए?
पहले ख्याल को समझेंगे तो ख्याल की हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। देखिए ना, हकीकत किसे कहते हैं, यानी वो चीज जिसमें तगैयर ना हो। ठीक हो गया ना? यानी जो चीज जिस तरह से अल्लाह के जहन में है उसी तरह से आप अगर उसे जान लेते हैं तो आप हकीकत तक पहुंच गए। हमने हकीकत का तर्जमा ही गलत किया हुआ है, लिहाजा हकीकत ये है कि आप ख्याल पे गौर करेंगे तो खुद ही हकीकतें समझ आएंगी। देखे ना, जब ये शऊर आ गया कि मुझे ये पता चल गया कि कौन सी चीज में तगैयर है किस चीज में तगैयर नहीं है। अब आप भूख है, आप कहते हैं भूख मुझे बार बार लगती है, हैं? इसमें इस सतह पे तगैयर है, लेकिन भूख सबको लगती है और अजल से लग रही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। शेर को भी लग रही है, कुत्ते को भी लग रही है, बिल्ली को भी लग रही है, सांप को भी लग रही है, इंसान को भी लग रही है, तो भूख क्या हुई? एक तकाजा हुआ, और ये सारी मखलूक में मुश्तरक है। तो भूख एक तरफ क्या है, तगैयर पजीर है जब उसका मुजाहरा होता है, और दूसरी तरफ वो एक परमानेंट हकीकत है। तो ये उसकी हकीकत सामने आ गई, हाँ या नहीं? चले, खुश रहिए। और कोई सवाल?
सर एक सवाल
इरशाद
है कि वो अभी मेरी एक दोस्त से उसके भाई का 27 रमजान को इंतकाल हुआ।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
कब्र खुदवाने के लिए गए तो उनकी वालदा के बराबर में ही जगह थी, वहाँ खुदवाई। तो कब्र खोदते हुए वो खुदाल उसकी कब्र पर लगी और एक जगह से खुल गई। तो जब उन्होंने रोशनी डाल के देखा तो उनकी वालदा की जो तो मैयत थी ना, वो वैसी की वैसी थी, ना कफन मैला हुआ था ना कोई मिट्टी।
माशाल्लाह जी।
तो उनके इंतकाल 9 साल हो चुके हैं, उनका भी इंतकाल रमजान को हुआ था जुमे के दिन। सर मुझे ये पूछना था कि जो महफूज रहते हैं जैसे शहीदों के हुए या वो, तो लेकिन हम जब इस दुनिया से जाते हैं तो रोशनी में रोशनी
करें। मैं आपको एक मादी मिसाल दे देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। देखिए, लोहे को मिट्टी में दफना दें, दबा दें, तो क्या होता है, उसे जंग लग जाता है और वो लोहा जो है वो भुरभुरा होके खत्म हो जाता है, हाँ या नहीं? अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि लोहे को आप फौलाद बना दें या उसको मैग्नेटाइज कर दें, अब क्या होता है, मैग्नेट कैसे बनता है, उसमें से करंट गुजारा जाता है, उसके गिर्द करंट गुजारते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो लोहे में मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है, मकनातीसियत पैदा हो जाती है। मकनातीसियत किसे कहते हैं? लोहे के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सारों की पोलैरिटी यकसा हो जाती है। आपको पता है हर वो मॉलिक्यूल जो है ये इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव की दुम के साथ जुड़ जाते हैं, सारों का किबला दुरुस्त हो जाता है, सारे एक ही रुख पे आ जाते हैं। अब जब इस किस्म के लोहे को आप दफना दें तो उसको रस्ट नहीं लगता। अगर किसी बंदे की सोचें अल्लाह के तर्जों के मुताबिक हो जाएं, अल्लाह का उसको मुशाहिदा हो जाए, हम कहते हैं ना शहीद का जिस्म जाया नहीं होता, तो शहीद कहते किसे हैं? जिसको अल्लाह का मुशाहिदा हासिल हो जाए, जिसके अंदर से अल्लाह का करंट गुजर गया। भाई वो क्या हुआ, वो तो जीता जागता मैकनाटीस बन गया कि नहीं?
जी सर।
क्या मतलब हुआ? तो ये बात हजूर मुर्शिद करीम ने फरमाई थी कि फकीर का जिस्म जाया नहीं होता,
दोबारा लौटाई जाएंगी जो महफूज
हैं। अर्ज ये है कि जब जिस्म जाया नहीं हो रहा तो इसकी कोई वजह है ना जी, हैं? अल्लाह तो देखे ना, वो हजरत इब्राहिम के वाक्य में परिंदों के बिखरे हुए जिस्म तक जो कीमा करके उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों पे बिखेरे, उनको जमा कर सकता है, तो ये तो जिंदा को मतलब है बॉडी को उठाना कौन सा मुश्किल है। और कुरान में बार बार कहा गया कि हम तुम्हें दोबारा तुम्हारा रिकॉर्ड बहाल कर देंगे। ठीक हो गया
जी सर, थैंक।
चलें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज जी,
थैंक यू सो मच सर,
अल्लाह हाफिज।